आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, SBS पर मैं हूं अनीता बरार और हम मुलाकात कर रहे हैं जानी मानी गायिका कलापिनी कोमकलीसी से, जो पद्म विभूषण कुमार गंधर्व की पुत्री और शिष्या है। कुमार गंधर्व, जिन्हें संगीत की दुनिया में एक चमत्कार कहा जाता है। अब कलापिनी जी को संगीत तो विरासत में ही मिला था, लेकिन बताया गया कि बचपन में उन्हें संगीत से कोई भी लगाव नहीं था। क्या ये बात सच थी? तो सबसे पहले उनसे यही जानना चाहा, तो उन्होंने कहा,
बिल्कुल सही बात आप तक पहुंची है
जी।
तो शुरू से, जब से मैंने होश संभाला, तभी से घर में संगीत जो है वो गूंज रहा था चारों तरफ से। और मेरे लिए तो ये था कि जब भी मैं सुबह उठती थी और रात को सोती थी, तो सारा समय मैंने अपने आई बाबा को या तो किसी को सिखाते हुए देखा है, या उसके ऊपर चर्चा करते हुए देखा है, या संगीत से संबंधित घटनाक्रम के अंतर्गत ही मतलब पूरा घर हमारा हुआ करता था। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि मैं शुरू में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेती थी संगीत में। शायद अब मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो उसके पीछे शायद एक मुझे साइकोलॉजिकल रीजन यदि मैं ढूंढू तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने बचपन में जब भी कभी आंख खोली सुबह उठकर, मैंने कभी अपनी माँ को अपने पास नहीं पाया। वो हमेशा दूसरे कमरे में रियाज करती रहती थी या बाबा के साथ में चर्चा करती रहती थी, ऐसे कुछ चलता रहता था
जी। जी,
और इस वजह से मुझे हमेशा ये लगता रहा है कि इन लोगों को मेरे लिए कोई तवज्जो नहीं देते ये लोग, और इनको मुझसे कोई लेना देना है नहीं, तो मैं भी क्यों इनके संगीत से लेना देना रखूं, क्योंकि तो संगीत ही वो चीज है जो इनको मुझसे दूर कर रही है। तो इस वजह से शुरू में कई वर्षों तक मुझे बिल्कुल रुचि नहीं रही, और फिर जैसे जैसे थोड़ा समझ बढ़ती गई, बल्कि मैं ये कहूंगी कि क्या होता है कि संस्कार अपना काम करते रहते हैं चाहे न चाहे। हम
जी
जिस माहौल में पलते बढ़ते हैं, जिस माहौल में हमारा सारा समय बीतता है, उसका प्रभाव हम पर निश्चित रूप से पड़ता है, अच्छा या बुरा, आप जैसा चाहें जैसा कह लें उसको। तो उस तरह से मेरे ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रभाव तो हो ही रहा था, वो संस्कारों के माध्यम से हो रहा था, और शायद मेरे मन में या दिमाग में कहीं ना कहीं उस संगीत की लहरियां रच बस रही थी जो मुझे मालूम नहीं था। मैं ऊपरी तौर पर उससे एक तरह से बहुत अलगाव महसूस कर रही थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर कहीं मेरे में अंदर जा रहा था। तो जब एक लंबे समय बाद जब मैंने सही अर्थों में होश संभाला, तब मुझे लगा कि यही एक वो चीज है जो मेरे माता पिता से मुझे जोड़ सकती है।
तो कि जब आपने उनके अपने सुर भी पहचान लिए और उसके माधुर्य को भी आपने पहचान लिया, तो उससे आपके ऊपर अपेक्षाओं का जो भार है वो आपको कितना महसूस होता था?
ये बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया है, जबरदस्त भार महसूस किया है मैंने,
हाँ।
अभी भी करती हूँ कई बार, ऐसी बात नहीं है कि मैं
तो
पूरी तरह से उससे उबर चुकी हूँ, बल्कि मुझे अब ऐसे लगता है कि उस भार के अंतर्गत रहना भी एक मेरे लिए एक सुखद बात है। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ये जरूरी नहीं कि हम उससे पूर्ण तरह से मुक्त हो जाएं, बल्कि उससे मुक्त होना मैं नहीं चाहती सच कहूं तो। वो कहीं ना कहीं आपको प्रेरित भी करता है, वो भार आपको प्रेरित करता है ऐसे मुझे लगता है, और वो जिम्मेदारी आपको प्रेरित करती है, अदरवाइज हम बेछूट हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी। पर ये बात सही है कि शुरू के वक्त में, शुरू के समय में जब मैंने गाना सीखना शुरू किया और कई वर्षों के बाद में जब प्रस्तुति का अवसर बना और जब मैंने व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देनी शुरू की तो लोगों की भी बहुत जबरदस्त अपेक्षाएं मेरे से थी,
जी
जिन्हें मैं गलत नहीं मानती एक तरह से, क्योंकि तो उन्होंने इतना सुंदर संगीत मेरे माता पिता मेरे गुरुओं के माध्यम से सुना हुआ है, तो स्वाभाविक है उनकी अपेक्षाएं मुझसे होना बहुत लाजमी बात थी।
जी
लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं उनको सेटिस्फाई कर सकूं, बल्कि मैं अपने खुद को भी एक तरह से सेटिस्फाई पहले करूं, तभी जाके मैं किसी और को सेटिस्फाई कर सकूं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है मेरे लिए, और मैंने शुरू के कई वर्षों में बहुत प्रयत्न किए इस माध्यम से कि मैं उस दायरे से बाहर भी निकल सकूं और उस दायरे को मैं देख भी सकूं। ये सब करते हुए मुझे एक बात जो समझ में आई कि मुझे यदि इन सब बातों के ऊपर चढ़कर यदि कुछ हासिल करना है तो मुझे उसके अंदर भी उतनी ही गहराई से जाना होगा। जब तक हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, उसको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, हम उसके ऊपर आकर उसके सौंदर्य को, उसकी उसकी ब्यूटी को नहीं समझ सकेंगे, और हम ना तो खुद समझ पाएंगे ना हम अपने श्रोताओं को समझा पाएंगे। तो वो
बिल्कुल
एक प्रोसेस है जो लंबे समय तक करते रहने से शायद उसके बाहर हम आ सकते हैं, वैसी कुछ प्रोसेस मेरी अभी भी जारी है।
जी, बिल्कुल मैं सोच सकती हूँ, क्योंकि कुमार जी का जो उनका जो संगीत है वो तो इतना अथाह समुद्र है, उसके अंदर आप
जी
कितने भी गोता लगाइए, आपके हाथ सारे मोती तो आ ही नहीं सकते,
बिल्कुल
जाने
बिल्कुल
कितने
बिल्कुल
बिखरे
सही।
हुए हैं। तो जो आपकी शैली है उनसे तो प्रभावित तो हुएंगी ही, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है।
जी
तो कुछ लीक से हटके करने की भी कोशिश है क्या आपके?
जब तक आप आपके गुरु के द्वारा गाई हुई शैली को पसंद नहीं करते,
जी
आप समर्पित भाव से नहीं सीख पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए निश्चित रूप से मुझे उनकी शैली में बेहद विश्वास रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि
तो वो बिल्कुल
मुझे
अलग
मालूम
है।
है कि वो, हाँ वो बहुत अलग है शैली, वो बहुत से घरानों की खूबसूरती एक साथ लेकर बनी हुई एक शैली है।
जी
तो और मुझे मालूम है कि उसके पीछे कुमार जी के क्या विचार रहे हैं, वसुंधरा जी के क्या विचार रहे हैं। जहां तक मेरा अपने कुछ उसमें नए जोड़ने का प्रश्न है, मैं तो एक क्या कहूँ, एक एक सिंसियर विद्यार्थी कह लीजिए, एक सिंसियर डिसाइपल कह लीजिए, के माध्यम से के रूप में मैं उसे आत्मसात भी करने की कोशिश करती हूँ और उसे वापस अपने तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके सामने, श्रोताओं के सामने उस बात को रख सकूं। इस प्रोसेस के दौरान
जी
जो मेरी अपनी कुछ खूबियां हैं या जो मेरी अपनी कुछ कमियां हैं, उन दोनों के मेल से जो कुछ नया बनकर आता है, शायद मुझे नहीं मालूम, ये श्रोता बताएंगे कि उन्हें उस बारे में क्या लगता है, बजाय इसके कि मैं अपने गाने के बारे में बताऊं, ये श्रोताओं की तरफ मैं देखूंगी और उनसे मैं चाहूंगी कि वो इस बारे में बात करें, बजाय इसके कि मैं अपने गाने के बारे में बात करूं।
अच्छा, भी मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि जो आपकी रचनाओं का चयन होता है उसको
जी
आप उसका आप किस तरह से चयन करती हैं, क्योंकि वो जो भार है आपके ऊपर, विशुद्ध होना चाहिए, कुछ मिश्रित हो जाए, कहीं लोक संगीत आ
जी
जाए।
हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। मेरे मालवा का लोक संगीत मेरे बहुत दिल के करीब है, मेरे मालवा का निर्गुण मेरे बहुत दिल के करीब है,
हाँ, निर्गुण।
परंतु उसी के साथ में कुमार जी और वसुंधरा जी द्वारा सिखाई हुई परंपरागत रागों की बंदिशें, जो परंपरागत राग हैं, जो हमारे अनेक अनेक मतलब शतकों से चले आ रहे हैं, बहुत सुंदर राग, उन उन रागों में बनाई हुई परंपरागत बंदिशें जो पुराने कंपोजर से बनाई हैं, और उन रागों में बनाई हुई कुमार जी की भी बंदिशें, तो इन दोनों का मैं कोशिश करती हूँ कि समन्वय मेरी परफॉर्मेंस में रहे, ताकि वो जो पुराना जो बहुत ही सुंदर एक मतलब एक कैप्सूल है वो भी सामने आए, और उसी के साथ कुमार जी ने उन रागों को लेकर क्या विचार किया है, अपनी बंदिशों के माध्यम से उन्होंने उस राग की क्या खूबसूरती हमारे सामने लाई है, उसको भी मैं कहीं ना कहीं आप सब लोगों के साथ, श्रोताओं के साथ साझा कर सकूं, ये मेरा प्रयत्न रहता है। उसी के साथ में जैसे आपने कहा, मेरा मालवा का निर्गुण, मेरे मालवा के लोकगीत भी कहीं ना कहीं झांकते रहे मेरी परफॉर्मेंस में उसका भी मैं ध्यान रखा करती हूँ
तो मन तो मेरा
जी
कर रहा है कि कुछ आप हमारे लिए भी गुनगुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा
जी
सा सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि
जी
जो शास्त्रीय संगीत है उसका एप्रिसिएशन शायद थोड़ा सा कम है। कई कारण हो सकते हैं, तो आपको क्या
जी
लगता है कि उसको किस तरह से लोकप्रिय बनाया जा सकता है? या
देखिए, एक बात मैं आपको पहले से बता दूं, जो कि आप जानती भी हैं, मैं मानती हूं इस बात को, शास्त्रीय संगीत एक कल्टीवेटेड आर्ट फॉर्म है। ये कोई लोक धुन नहीं है, लोकगीत नहीं है, ये कोई पॉपुलर भजन नहीं है, है ना, जो मासेस में गाया जाए या मासेस इसको एक्सेप्ट करें। जब कोई चीज संस्कारित होती है, कल्टीवेटेड होती है, तो उसे सुधी लोग अपनी अपनी मतलब जिसको हम कहते हैं अभिरुचि, मतलब जो आपकी आपकी पर्टिकुलर उस चीज को चाहने की जो एक दृष्टि है, जब तक वो आपकी दृष्टि नहीं बनेगी, आपका नजरिया नहीं बनेगा, वो आपसे आकर नहीं मिल सकेगी वो चीज। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि शास्त्रीय संगीत ये एक कल्टीवेटेड ऐसा फॉर्म है जो खुद होके आपसे बात नहीं करेगा, आपको उसके करीब जाना होगा। यदि आप एक बार दो बार उसके करीब चले गए और यदि आपने दो या तीन महफिलें सुन ली, फिर वो अपना जादू आपके ऊपर बिखेरना शुरू
हाँ,
करेगा। उसका प्रचार प्रसार तो आजकल बहुत हो रहा है, फिर भी अभी वो एक सीमित दायरे के लोगों के बीच में ही वो जाना जाता है। ये समझने वाली चीज है। ये क्लासिकल म्यूजिक ऐसा नहीं है कि आप आते जाते घूमते फिरते आपके कानों पे कुछ पड़ गई बात और आप उसको गुनगुनाने लग गए, क्योंकि उसका
जी
शास्त्र है, उसका व्याकरण है। जब तक आप उन खूबियों को नहीं थोड़ा समझेंगे, आपको वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी चीज। और शायद
बिल्कुल
इसीलिए कुछ लोग कुछ सीमित दायरे में इसका चलन है, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि उसका कोई मतलब समय निकला जा चुका है, ऐसा नहीं है।
नहीं।
वो बिल्कुल बनी हुई है चीज, वो बनी हुई है चीज, बल्कि कई कैप्सूल्स में वो हम देख रहे हैं, जहां जहां जाते हैं नए लोग भी कुछ बहुत सुंदर तरीके से जुड़ रहे हैं, उसमें बहुत रुचि ले रहे हैं। दायरा कम हो सकता है, लेकिन रुचि बहुत बड़ी है।
जी तो क्यों
जी
ना आपसे अब हम कुछ सुन ले थोड़ा सा
ओहो, मैं तो आ ही रही हूं आप लोगों के बीच।
जो आप
जी,
तक नहीं पहुंच पाएंगे उन तक आप हमारे माध्यम से
अरे
पहुंच।
छोटी सी गुनगुना देती हूँ जो
जी
शायद
जी
आपको अच्छा लगे। उड़ जाएगा उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जैसे पात गिरे तरुवर से, मिलना बहुत दुहेला, ना जानू किधर गिरेगा, लग गया पवन कारेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। थैंक
क्या
यू सो
बात है,
मच।
क्या बात है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद करूंगी। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
इस पॉडकास्ट को डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमसे जुड़िए जब आप चाहें। SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।